ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต
่ไม่ได้ถู
กแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม
่ได
้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่
ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูกแต่ไม่ได้ถูก
पांचवें से सातवें में जा सकते हैं चौथे से जा सकते हैं पांचवें में चौथे से जा सकते
हैं महाव्रत लेके
चौथे में महाव्रत ले ले तो सातवां हो जाएगा चौथे में अनुव्रत ले तो पांचवां हो जाएगा अच्छा पांचवें से कहां जाएगा तो सातवें जी
सातवें की बात है
फिर तो वो अलग व्यवस्था बनाना अब अगर जो है चौथे से नीचे आए तो किसमें किसमें
पहले तीसरे में फिर दूसरे में फिर या चौथे से सीधे पहले में भी आ सकता
है चौथे से पहले में भी आ सकता है चौथे से दूसरे में भी आ सकता है चौथे में तीसरे में भी आ सकता है डायरेक्ट ऐसा है और क्रम से भी आ सकता है पांचवें से
भी एक पहले में आ सकता है और तीसरे में भी आ सकता है दूसरे में भी आ
सकता है
पहले ये
कैसे कैसे चढ़ते हैं ये दिखाई और फिर उसके बाद पहले
लिखो फर्स्ट तो उनके नाम लिख लें
नंबर वन पहले फर्स्ट फर्स्ट से कहाँ कहाँ जाएंगे एरो लगा करके लिखते हैं कि तो क्या अपवर्ड ऐसा कर दें है ना फर्स्ट ऊपर जाते समय तो ऊपर कहाँ कहाँ जाएंगे फोर्थ फर्स्ट टू फोर्थ एकदम फर्स्ट टू फाइव फर्स्ट टू सेवन ये फिर फोर टू सेवन फिर फाइव टू सेवन अब अगर नीचे गिरेंगे तो एरो नीचे की तरफ लगा दें उसमें तो उसमें क्या करेंगे फोर टू क्योंकि फर्स्ट से नहीं गिरता फोर से गिरेगा तो थ्री आर टू आर वन फोर से थ्री में आएगा या कि टू में जाएगा या कि वन में फर्स्ट में पहले से तीसरे में भी जा सकता दूसरे में भी जा सकता पहले में भी जा सकता चौथे से इसी तरह पांचवें और सातवें से भी है ना पांचवें से भी चौथे में आ सकता है एक बार थोड़ा बढ़ जाएगा पांचवें वाले तो पांचवें से चौथे में भी तीसरे में भी दूसरे में पहले सब में गिर सकता है सातवें से भी पांचवें में आ सकता है सातवें से तो छठे में भी आ सकता है आता ही है सातवें से छठे में गिरता है और पांचवें में भी गिर सकता है सीधा बिना छह को छुए सीधा सात से डायरेक्ट पांच सात से डायरेक्ट चार तीन सब एक में आ गए दो में भी आ सकते हैं सात से तीन में भी आ सकते हैं सब आ सकते हैं पांचवें से भी चौथे में तीसरे में सब खुले हुए हैं मतलब गिरने के लिए सब चढ़ने के लिए सब देख कर गिरने में तो कैलो रखना है ढक कर अगर नीचे आ गए कहीं बीच में अटक गए तो थोड़ा वो पता गिर ये हो तो अब एक साइड लिख लो कहीं पर कि दूसरा तीसरा और छठा ये तीन जो है गिरने के गुण स्थान है थोड़ा आइडिया रहे कभी भी ध्यान रहे गिरने के लिए तो ये गिरता है कहीं ना कहीं से तब ये बनते हैं और ऐसे नहीं बनते कोई पहले से दूसरे में जाना चाहे तो नहीं ये सामान्य रूप से हो गया इसी तरह लिख लें कि सातवें से आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां ये क्रम से चढ़ते हैं सातवें से आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां ये एक क्रम है दूसरा क्रम क्या है सातवें से आठवां नौवां दसवां बारहवां ये दो क्रम हैं चढ़ने के
बारह
एकदम ये दूसरा क्रम एक क्रम कौन सा हुआ आठ नौ दस ग्यारह हाँ सात से एरो लगाइए सात से एरो लगेगा कहाँ जाएगा आठ आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह इस तरह से ये एक के बाद एक जाएगा इसमें कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे सात से ग्यारह पहुँच जाओ नहीं आठ जाना पड़ेगा नौ जाना पड़ेगा दस जाना पड़ेगा ग्यारह इस तरह से एक 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 करके। फिर दूसरा ये एक तरह की, इसको बोलते हैं, इस तरह के क्रम को बोलते हैं उपशम श्रेणी। जब इस तरह से कोई चढ़ता है तो इसको बोलते हैं उपशम श्रेणी, और दूसरे क्रम से चढ़ेगा तो वो लिखे अपन सातवें से आठवें में जाएगा, नौ में जाएगा, दसवें में और सीधा बारहवें, ऐसा जाएगा तो ये कहलाएगी शपक श्रेणी। शपक बस इतना पर ध्यान रखना, ग्यारह नहीं जाए,
जो दस क्या कहते हैं
इसको शपक, जो 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 दस से सीधा बारह जाएगा, जो जो दस से सीधा बारह जाएगा वो शपक श्रेणी। सात से नौ, सात से आठ, नौ दस और फिर सीधा बारह, तो वो क्षपक श्रेणी वाला होगा तो जाएगा, नहीं तो काहे को जाएगा। उपशम श्रेणी वाला होगा तो ग्यारह में जाएगा, और ग्यारह में जाने वाला जरूर से नीचे आता है। ग्यारह में जहाँ लिखा है तो वो थोड़ी देर रुकता है, और जरूर से दस में आएगा, दस से नौ में आएगा, नौ से आठ में आएगा, आठ से सात में आएगा, क्रम से गिरेगा, ऐसा नहीं गिरता एकदम है, क्रम से चढ़ता है, क्रम से गिरता। देखो बारहवें की चर्चा बिल्कुल अलग है, बारहवें में चढ़ गए तो गिनने नहीं है, ग्यारहवें की चर्चा है कि ग्यारहवें में गए हो तो जरूर गिर लो, ये ग्यारहवें में गिरने का है। इसी तरह क्रम से आएगा नहीं, दस नौ आठ सात तक आना पड़ेगा, सात से फिर चढ़ो हिम्मत करके दूसरी बार तो ठीक, और अगर बिल्कुल ही हिम्मत गई तो पहले में आ जाए। अरे दोबारा से नहीं, फिर तो गए पहले में आ रहे, फिर हम कितना फिर क्या, फिर बहुत मुश्किल। अगर साथ में रुक गए और फिर हिम्मत करी तो संभव है कि शपक श्रेणी चढ़ जाए, अन्यथा फिर तो गिर जाता है। छह हमेशा गिरने का है, छह जो है हमने लिखा ना उसमें दो तीन और छह, पांचवा ये हमेशा गिरता है, सात से छह, कभी पांच से छह नहीं आएगा, जब भी आएगा छठवें में तो सातवें से छठवें में। ठीक है, ओके, अब जो है इनके नाम लिख लो। फिर बारहवें से, सॉरी बारहवें से अपन ने पूरा नहीं किया, बारह से सीधा लगा दो, बारह से तेरह चौदह, ग्यारह वाले को कर दिया अपन ने नीचे उतार दिया, दस नौ आठ सात, और उधर बारह वाले को ऊपर चढ़ाओ, तेरह चौदह वो थोड़ी नीचे गिरेगा, नहीं जो ग्यारह पे आया वो नियम से नीचे गिरेगा, ये कन्फर्म कर दीजिए। बारह से तेरह ही आएगा, चौदह नहीं आएगा, ये सब गुणस्थान क्रम क्रम से होगी, बारह से तेरह जाएगा, तेरह से चौदह जाएगा, और चौदह के बाद सिद्ध होगा, उसके बाद लगा लो निशान सिद्ध सीधा, ये प्रक्रिया है गुणस्थानातीत, उसको अब ये सिद्ध बन गया। और तेरह में कहलाएंगे अहम, तेरह में भी अहम, चौदह में भी अहम, लेकिन तेरह में कहेंगे सहयोग के लिए, चौदह में कहेंगे योग के लिए, लिख लो वहीं के वहीं, ये तो पूरा चार्ट जैसा बना लो, इसको तेरह के सामने लिख लो, तेरह और चौदह दोनों केवली है, लेकिन तेरह में उनको सहयोग केवली कहेंगे, चौदह में आयोग केवली कहेंगे, तो दो स्थान आराम से समझ में आने वाले, तेरह में सहयोग केवली, चौदह में आयोग केवली। अब अपन एक अन्य स्थान के नाम लिख लीजिए, फिर उनका लक्षण लिख लीजिए। इतना काम हो गया, एक की पहले गुण स्थान में जो जीव रहता है वो अगर श्रद्धालु हो जाता है, श्रद्धा करता है, तो सीधा चौथे में पहुंच जाता है, और फिर उसकी श्रद्धा के साथ में अगर थोड़े से व्रत नियम होते हैं तो पांचवें स्थान में पहुंच जाता है, अगर महाव्रत ले लेता है तो सातवें में पहुंच जाता है। इसी तरह से अगर पांचवें वाला जो अनुव्रति है उसने भी महाव्रत ले लिया तो वो भी पांचवें से सातवें में पहुँच जाता है, सातवें में पहुँच करके अब वो अपनी कषायों को अगर दबा करके ऊपर चढ़ता है तो आठवें में जाता है, नौवें में जाता है, दसवें में जाता है, और ग्यारहवें में, इस तरह क्रम क्रम से कषायों को दबा करके ग्यारहवें स्थान तक जाता है, फिर उसकी कषाय उदय में आ जाती है क्योंकि उसमें दबाई थी, तो धीरे से नीचे गिरता है, 10 में आता, 9 में आता, 8 में आता, 7 में आता, ये एक प्रोसीजर है। एक जीव ऐसा भी है जो अपनी कषायों को नष्ट करके आगे बढ़ता है, उसको देखो लिखने में तो ऐसा हो जाएगा, लिखने का लिख ले। मैं पहले एक बार समझाता हूँ, अब जो है सातवें वाला हिम्मत करके अपने कषाय को नष्ट करके ऊपर चढ़ता है, तो आठवें में जाता है, नौवें में जाता है, दसवें में जाता है और सीधा बारहवें में चला जाता है और बारहवें में रुक करके तेरहवें चौदहवें में जा करके सिद्ध हो जाता है। ये दूसरा प्रोसीजर है, इस तरह से दो प्रोसीजर ये सातवें के बाद वाले हैं। तो अब इनके जो अपन वो लिखेंगे, ये स्वरूप लिखेंगे ना नाम, उसमें ये सब आ जाए कि कौन जीव कहाँ से बढ़ता है और कैसे आगे बढ़ता है, कैसे क्यों बढ़ता है। एक एक हमने सिर्फ फ्रेम बना लिया कि अपने उसमें दिमाग में रहेगा कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन
हाँ
वो कहीं भी सुनते हैं अपन तो एकदम दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा,
ये फ्रेम भी हम
लिखना है। लिख लो, कैसा लिखेंगे, कोई जीव ऐसा लिखेंगे, कोई जीव जब सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा कर लेता है, तब वह पहले से चौथे मूल स्थान को प्राप्त करना है। जब कोई जीव सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा कर लेता है, तब वह पहले से चौथे मूल स्थान को प्राप्त करता है। यदि वह व्रत सहित अनुव्रत सहित, व्रत में अनुव्रत लिखते हैं, अनुव्रत सहित होता है तो पांचवें गुण स्थान में पहुंचता है। यदि महाव्रती होता तो सातवें स्थान में जाता है, तो उसका सातवां स्थान होता है। यदि महाव्रती होता है तो उसका सातवां स्थान, अभी गिर में कहीं लिख रहे सातवें स्थान से कषायों को दबाकर यदि आगे बढ़ता है तो क्रमशः आठ, नौ, दस और ग्यारहवें गुण स्थान तक जाता है। वहां कषाय का उदय जाने पर, वहां कषाय का उदय जाने पर क्रमशः पुनः 10, 9, 8, 7वें स्थान तक आता है। इसे उत्सम श्रेणी कहते हैं। दूसरा कोई जीव यदि सातवें गुण स्थान से कषायों को नष्ट करके आगे बढ़ता है तो क्रमशः आठ, नौ, दस, बारह, आठ, नौ, दस और बारहवें गुण स्थान में पहुंच जाता है। वहां चार घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है, यही अरहंत अवस्था है। इसे तेरहवां गुण स्थान कहते हैं। से तेरहवां अनुष्ठान करते हैं। फिर यह जीव योग निरोध करके चौदहवें अनुष्ठान में, फिर यह जीव योग निरोध मन वचन काय की क्रियाओं को रोक लेता है। अभी कषाय रोग की नष्ट करी क्या, मन वचन काय की क्रिया भी खत्म कर देता है। इसी तो योग सहयोगी, इसलिए सहयोगी था। फिर योग निरोध करता है और चौदहवें स्थान में पहुंचता है, वहां अयोग्य भी कहलाता है। समस्त कर्मों का नाश को नाश करके ऐसा जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर ले। बस ये शॉर्ट में है। तो वो स्थान पे भी कहानी अब लिखे हैं, वो स्थान किसे कहेंगे? डेफिनेशन, मोह और योग के माध्यम से जीव के भावों में होने वाले होने वाले ठीक है यार, आना चाहिए बचपन भी अच्छा, उतार चढ़ाव को गुण स्थान कहते हैं। यद्यपि भाव अनंत है, परंतु अत्यंत मलिन परिणामों से लेकर अत्यंत मलिन परिणामों भावों परिणाम मतलब भाव अत्यंत मलिन परिणामों भावों से लेकर अत्यंत विशुद्ध परिणाम को व्यक्त करने के लिए 14 श्रेणियां बनाई गई हैं। यही 14 योग स्थान कहते हैं। हमने तो इसको बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, पूरा का पूरा। हम सोच रहे थे हमने परिभाषा लिखी है, नहीं ये आप पूरा लिख लेंगे तो आपको लिखना क्लियर हो जाएगा। ये पूरा लिखवा देता हूँ। प्रथम गुण स्थान नंबर 1, पहले गुण स्थान के नाम लिखते। नंबर 1 मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान पहला। नंबर 2 सासादन सम्यक दृष्टि, नंबर 3 सम्यक मिथ्या दृष्टि लिख लिया। नंबर 4 अविरत सम्यक दृष्टि, फिर देश विरत, चित्त का नाम है देश विरत, विरत। नंबर 6 प्रमत्त विरत, प्रमत्त, प्रमादी, आलसी, प्रमत्त विरक्त। फिर सिक्स में थोड़ा सा भी कट असावधानी हो गई, प्रमत्त मतलब असावधान, ऐसा भी कहते आलसी शब्द अच्छा नहीं, अप्रम असावधान, और अप्रमत्त मतलब सजग सावधान। तो सातवें नंबर का है अप्रमत्त विरत, सातवें नंबर का है अप्रमत्त विरत। नंबर एट अपूर्वकरण, एट अपूर्वकरण। नंबर नाइन अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण। नंबर नाइन हो गया, टेन है सूक्ष्म सांपराय, सूक्ष्म सांपराय, सांपराय के माने लिख लो कषाय, सांपराय के माने लिख लो कषाय, सूक्ष्म सांपराय। फिर ग्यारह उपशांत कषाय, उपशांत कषाय। बारह क्षीण कषाय, मेरा कक्षा का उच्चारण क्षीण कषाय, काषाय योगी क्षण, क्षत्रज्ञ क्षण, क्षीण कषाय। इसलिए तेरवा संयोग केवली, चौदवा अयोग केवली, एकदम आसान। अब कल जो है सबसे उन स्थान के नाम सुनेंगे। पुराना चीज है बने बने याद में थोड़ी कर पाएंगे, लिखते जा रहे हैं, ठीक लिखते जा रहे हैं, याद रहेंगे। पढ़ने वाले बुद्धि बुद्धि बढ़िया पढ़ गया। तो अब लिख ले सबकी ना परिभाषा। प्रथम गुण स्थान मिथ्या चुका है, नंबर वन डाल के मिथ्या दृष्टि लिख करके लिखना, नंबर वन मिथ्या दृष्टि हेडिंग। प्रथम गुण स्थान मिथ्या चुका है, इसके अंतर्गत बेसभी भी आते हैं, यह गुण स्थान मिथ्या चुका है, इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो आत्मज्ञान से विमुख होते हैं, वे सभी जीव आते हैं जो आत्मज्ञान से विमुख होते हैं, जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, जिन्हें तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होता। और सरल भाषा, जिन्हें तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होता या जिनके भीतर सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, जिनके भीतर तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे कुछ मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, श्रद्धा नहीं होती। ठीक, तो इसमें बोलने में दूसरी बार मन से बोला ना, लिखा नहीं है। फिर ये हो गया, अब लेकिन ऐसा लिख पाए क्या दूसरे गुण स्थान का, पहले दूसरे गुण स्थान का स्वरूप लिखवाए, या कि अब सीधा चौथे में चढ़ता है तो चौथे का लिख लें और फिर गिरेगा तो दूसरे का भी लिख देंगे, हम ऐसे लिखे हाँ, तो उससे क्लियर भी हो जाएगा। आत्म पुरुषार्थ नंबर फोर, चौथा नंबर डाला अभिरत, अभिरत आत्म पुरुषार्थ के बल पर जब यह जीव आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शरीर और आत्मा को तथक तथक जान लेता है, तत्वार्थ श्रद्धान कर लेता है, तब सम्यक दृष्टि होकर इस गुण स्थान को प्राप्त करता है। क्योंकि इस दशा में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होते हुए भी, अर्थात सम्यक दर्शन होते हुए भी, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन होते हुए भी व्रत नियम आदि पालन करने का संकल्प नहीं रहता, व्रत नियम आदि पालन करने का संकल्प नहीं रहता, इसलिए इस गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसलिए इस गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि कहा गया है। यह गुण स्थान चारों गतियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए जरूरी है। यह गुण स्थान चारों गतियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं, चारों गति के जीवों को, मनुष्य, प्रेयन, देवनाथ की, सबको। इस गुण स्थान से नहीं, अब इसमें थोड़ा और लिख लो, भले ही समझ लेना है पर लिख लो, फिर हम समझाने। इस गुण स्थान में भी बोलने, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इस गुण स्थान में जीव दर्शन मोहिनी क्रम का उपशम करता है या कि क्षय करता है या कि क्षय उपशम करता है। तो क्रम से अब सम्यक दृष्टि तो कहा आपने, पर तीन तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं, उपशम करने वाला उपशम सम्यक दृष्टि, क्षय करने वाला क्षय सम्यक दृष्टि, क्षय उपशम करने वाला क्षय उपशम। तो मैं ये लिखवाना चाह रहा था कि ये तीन प्रकार के, इसमें चौथे गुण स्थान में भी तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं, उसमें से क्षायिक सम्यक दृष्टि इस गुण स्थान से नीचे कभी नहीं होगा, ये स्पेशलिटी है। बाकी दो नीचे गिरेंगे, ऐसा ना हो कि इस गुण स्थान से सभी नीचे गिरते हैं, तो ये अपने को कोई एकदम कह देगा कि अच्छा ठीक है चौथे गुण सब नीचे गिरते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे कि ये तो मामला क्या है, कहते हो कि चौथे गुण सब नीचे गिरते हैं गिरा करते हैं, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा इसमें ये लिखवाना चाह रहा था। इस गुण स्थान में जीव दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम सब्साइडेशन, में उपशम सब्सिडेशन खिलाएगा, दबाना, उपशम मतलब दबाना, कर्मों को उदय में नहीं आने देना एक निश्चित समय के लिए, ये उपशम की परिभाषा पहले पहले सब्साइड कर लिए, तो उपशम कहलाएगा। फिर कामा करके उपशम ब्रैकेट में लिख लें जो भी लिखना, उदय में नहीं आने देना, सब्साइड कर देना ताकि याद रहे क्लियर, उपशम के ब्रैकेट में लिख लें सब्साइड करना या कि उदय में नहीं आने देना। फिर अल्पराम है क्षय, दूसरा है दर्शन मोहिनी का, ये तो होगा उपशम, फिर दूसरा क्षय, क्षय को क्या कहेंगे नष्ट कर देंगे, उपशम क्षय, क्षय मतलब नष्ट करना या क्षयोपशम, क्षयोपशम क्षय और उपशम दोनों में ही जुड़ी स्थिति होती है,
क्षयोपशम और शांत
है,
इस उसमें नष्ट भी करना और शांत
कुछ कुछ थोड़ा सा जो है उपशमित करता है, उदयाभावी उदय में नहीं आने देने रूप क्षय भी करता है और उपशम भी करता है दोनों। तो ब्रैकेट में लिखे क्षय प्लस उपशम, क्षय उपशम के ब्रैकेट में ताकि क्लियर हो जाए क्षय प्लस उपशम। अभी सामान्य बुद्धि समझने के लिए क्षय उपशम की परिभाषा बाद में लिख पाऊंगा, तो थोड़ी कठिन गुणों को दूसरा ये भी है कि गुणों को आंशिक रूप से प्रकट होने देना क्षय उपशम के लिए सरल परिभाषा। गुणों का आंशिक रूप से प्रकट होना ऐसा भी लिख लो ब्रैकेट में, सब ब्रैकेट में जाएगा ताकि तुरंत वहाँ पढ़ते समय सिखाना है। देखो एक चीज पढ़ाने के लिए कितनी सारी चीजें बताना चाहते हैं, एक सब एक दूसरे से लिंक है ना। शैवोपशम करके क्रमशः करके शैवोपशम करके क्रमशः औपशमिक उपशम वाला औपशमिक अपने आप क्रमशः लग जाए औपशमिक शायक औपशमिक शायक या क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाए है। या क्षायक सम्यक दृष्टि होता है, सॉरी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि गड़बड़ कर दिया मैं एकदम, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है लिखना ये था। अगला क्षायक सम्यक दृष्टि इस गुण स्थान से कभी नीचे नहीं गिरता, लेकिन शेष दो सम्यक दृष्टि अपना काल पूरा होने पर या लेकिन शेष दो सम्यक याद आया सोची अब भी कहेंगे लेकिन शेष दो सम्यक दृष्टि अपना काल पूरा होने पर या परिणामों में निर्मलता घटने पर नीचे गिर जाते हैं। बस अब नीचे गिर जाते हैं तो अपन नीचे गिरने वाले को स्थान पढ़ लेंगे उनके लिखने इतने धीरे धीरे होता है तो उन स्थान
अच्छा है
जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगी तो आ रही है ना, जो कभी नहीं आती अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आती है बता रहा। कई लोगों से अभी पूछ रहे ना गड़बड़ा जाएंगे, जो रोज स्वाध्याय करते होंगे वे भी गड़बड़ा जाएंगे इसमें। ये इसमें बहुत मेहनत के बाद मैं लिख के इसी तरह से लिख के रखा था कि सरल से सरल उसमें समझ में आना चाहिए। अब इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे एकदम क्लियर दिमाग में, जैसे हम लोगों को सुनते सुनते फ्रेम बना, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो पर हाँ ये ऐसा होगा भी ऐसा आ जाए। अब साधन और ये लिखने में समय लिखा है इसके बाद में अब दूसरा तीसरा लिखेंगे फिर पाँचवा लिखेंगे। हम क्या है कल तो सैटरडे को है हम कर लेंगे संडे को भी लेंगे नहीं होगी ऐसे ही होगा तो बड़ा अच्छा है। नहीं संडे को नहीं
संडे को पक्का बता देंगे
कल पक्का बता देंगे
या संडे को
जाने
क्योंकि छोटी दीपावली है ना तो
तेरस पड़ेगी संडे को। हाँ ठीक तेरस को नहीं करेंगे मंडे की चौदह बिल्कुल अमावस्या आएगी तो लगा नहीं लिखवा देंगे एक आधे विषमताएं क्या क्या है।
ये एक बार नहीं चलता अब मेरा मत निर्माण।